जलवायु की पुकार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जलवायु की पुकार विषय पर विशेष बातचीत के लिए आमंत्रित है वृक्ष मित्र अरुण जी ठाकरे सर। नमस्कार सर जी।
नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी।
सर, हम आपसे ये जानना चाहते थे कि वर्तमान में विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा संकट है और इससे निपटने के लिए हम छोटे छोटे ऐसे कदम कौन से उठा सकते हैं जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, अनुकूल रखने में मदद दे सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कदम उठा सकते हैं?
जी जी जी। हाँ, देखिए पातुरकर जी, ये छोटे छोटे कदम पर्यावरण जो है अनेक दूषित कारणों से होता है अपने यहाँ पे, है ना, जिसमें सबसे बड़ा कारण है वनों की सबसे अधिक कटाई का दोहन, कटाई और उसका दोहन। जनमानस में जो क्या है कि पौधों, पेड़ पौधों के प्रति बड़ी उपेक्षा की जा रही है, इससे अधिक से अधिक वृक्षारोपण, इसके लिए अपन क्या करें कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उसकी रोपण की आवश्यकताओं पर हम विशेष ध्यान दे। और सबसे बड़ा वृक्षारोपण कर लिया और ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया है, उसका संरक्षण भी करे उसको अपन, और कम से कम उसकी रक्षा तीन साल तक अपन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है सर कि पेड़ों को हम तने से ना काटे, उसको तने से ना काट के अपन उसकी शाखा है काटे, जैसा कि हमारे कृषक भाई जो करते हैं ना, कूप के लिए जो काटे वगैरह लेते हैं तो अपने डालियां काट देते, फिर वो बाद में और अंकुरित हो जाती है, बेर है बबूल है, ऐसी टहनियों को काटते हैं वो। तो इस प्रकार से अनेक उपायों से हम छोटे छोटे उपाय से करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और अनुकूलन भी रख सकते हैं जी।
सर जी, जैसा कि संसद क्षेत्र के भी बात करें तो आपके माध्यम से कईयों वृक्षों की यानी नर्सरी लगाकर आपने लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया, तो आज तक आपने ऐसे कितने वृक्ष रोपने के माध्यम से बनाए और उसका वृक्षारोपण करवाए?
जी, मैंने अपनी एक ऐसी कुछ एक दैवी शक्ति ने मेरे को बोला था, कहो या अंतरात्मा ने, ऐसा कुछ पुकार हुई थी कि मैं यहाँ पे कुछ पर्यावरण के बारे में कुछ करूँ। तो अपने गुरु पूर्णिमा 88 को मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने आए जीवन में 5 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करूंगा और फ्री में 5 लाख पौधे बांटूंगा, वृक्षदार फलदार ऐसे वृक्ष बांटूंगा। और उसी समय से मैंने संकल्प लिया था और आज तक वो जो संकल्प है मेरा, लगभग 4 लाख के ऊपर में पौधे बांट दिया है मैंने 32-33 साल में, लगभग हो गए मुझे। और क्या है कि मैं फ्री में देता हूँ और मेरे साथी लोग भी बहुत सहयोग देते है, बंडू गुरु जी है, हिंगवे गुरु जी है, आप जैसे पत्रकार भाई लोग हैं और समाज के सभी वर्ग मुझे साथ देते हैं, और कुछ किसान भाई भी ले जाते हैं, शालाओं में भी लगाता हो पौधे, शिक्षक लोग भी ले जाते हैं, और जहां तक मेरा संभव हो सके मैं उनके साथ में जाकर भी अपना वृक्षारोपण में सहयोग करता हूँ।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठाने से पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक परिवर्तन आया?
अपने छोटे छोटे कदम थे, ये सबसे बड़ा है कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण है एक मुख्य है। पर्यावरण अपन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे तो अपना जीवन भी क्या रहेगा कि सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहेगा, है ना। अपन धन दौलत तो बहुत कमा के जाते हैं, खेत बाड़ी मकान दुकान हो तो, लेकिन पर्यावरण ही दूषित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे दौलत को। तो छोटे कदम यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पौधारोपण करें, वायु प्रदूषण रोकें, अपना जल प्रदूषण रोकें, उसके अनेक उपाय हैं, अनेक टिप्स भी है उसके, और उसके बाद में क्या है कि उसको पौधे लगाना ही ये नहीं है अपना लगा दिया और हो गया। अपन देखते हैं कि शासन में नीति ऐसी आती इतने करोड़ पौधे लगा ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन देखते हैं कि टूट के टूट रह जाते। ऐसा ना करें, सबसे पहले अपन उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उसके बाद ही अपन उन पौधों को लगाए। लाखों में ना लगाए, हजारों में लगाए, लेकिन जो है अपना 100% सुरक्षित रहे, वो जीवित रहे, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए।
सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, वर्तमान में देखने को आता है आए दिन नर्सरी में पड़े छोटे छोटे पौधों को लाकर एक पौधा लगाते और फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल करते, लेकिन उसके बाद में वो पौधा बचता ही नहीं, यानी मान के चलिए कि उस पौधे की हत्या हो जाती है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये बात सही है सर आपके। कुछ लोग क्या है कि पौधे लगाए बहुत सी क्या कहते हैं, इसीलिए फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद उसके तरफ ध्यान नहीं देते। मैंने अभी बताया आपको कि उसका संरक्षण जरूरी है, हजारों में मत लगाओ, सैकड़ों में लगाओ। जैसे अपन किसान अपने खेत में 100 संतरे के पौधे लगाते हैं और उसको 100% जीवित रहे इसके और उसकी देखभाल करते हैं, वैसा ही ऐसा हर जगह करना चाहिए। उसको एक जीवित जीव समझना चाहिए और शासन के भी नियम बनाना चाहिए कि कम से कम जो कटाई हो रही है हो रही दुनिया भर का कठोर से कठोर कदम उठाए शासन भी। और जिस प्रकार से मानव हत्या का जो प्रकरण लगता है, वैसे ये जो वीरप्पन जैसे लोग हैं उन पे भी वो थोड़ा सा लागू करे, जिससे क्या होगा कि उनमें दहशत रहेगी और आगे तो नहीं करेंगे कम से कम।
सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि दूसरे लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में आप किस तरह जागरूक कर सकेंगे?
जलवायु प्रभाव अपन आए दिन देख रहे हैं, कहीं अधिक वृष्टि हो रही है, कहीं सूखा गिर रहा है। पहले जो चार चार महीने के ये ऋतुएं होती है, ऋतुएं समाप्त तो हो गई, 8 दिन बारिश नहीं आती, कभी कभी धूप काला बहुत अधिक बढ़ रहा है। आजकल हम देखते हैं कि 12 ही महीने क्या कहते क्या हो गया है, धूप काला ही रहता है। पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर क्या कहते क्या हो रहे हैं अपने बहुत अधिक पिघल रहे, जिसका परिणाम समुद्र पे हो रहा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये मानव ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, उसके उसके लिए कोई दोषी नहीं है, अपन स्वयं दोषी है। विकास तो हो रहा है संसार में, दुनिया में, अपने भारत में, हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विकास जो हो रहा है विनाश करके ही हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उनका विनाश करके ही हो रहा है। इसके लिए एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक हम अपना वृक्षारोपण करें, धरती को बचाए, जो अपने पर्यावरण को दूषित करते हैं हवा पानी और जल, इनका संरक्षण करें।
सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा हम बात कर रहे जलवायु की पुकार, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण जैसा अभी आपने भी बताया मौसम के संबंध में, इस वर्ष तो हमने एक दिन में 3 ऋतुएं देख ली, सुबह झनकारा, दोपहर बारिश और शाम को धूप काला, एक दिन में तीन ऋतुएं देखने को मिल गई। तो हम आज इस अवसर पर आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु को परिवर्तन करने के लिए जो कारक है, अत्यधिक वन कटाई, अत्यधिक अवैध उत्खनन, तो इससे निपटने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए या ग्रामीणों ने अपना फर्ज किस तरह निभाना चाहिए?
देखिए ये जो है ये पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता नहीं रही लोगों में, ना व्यक्तियों में रही, ना सरकारों में रही है। एक कोटा पूरा आज एक टारगेट दे देते कि इतना करो अपने को पौधा रोपण करना है, बस अपन आए दिन देखते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले समय भी ऐसा हुआ था कि नर्मदा बेसिन में 17 करोड़ 18 करोड़ के पौधे लगाना है, अब बाद में देखा वहां पे तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सैकड़ों में भी पौधे बचे होंगे। तो ये जो है सर, इसके लिए जिस प्रकार से एक जन आंदोलन जब तक नहीं होगा किसी चीज के लिए, जैसे आजादी के लड़ाई में भी जन आंदोलन हुआ था, अभी मोदी जी ने भी क्या कहते हैं एक स्वच्छता संबंधी जन आंदोलन किया है, वैसे जन आंदोलन होना चाहिए और जनता ने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, इसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होंगे, अधिक से अधिक क्या कहते हैं पेड़ पौधे बचाएंगे। और एक मेरा एक मैंने कोटेशन बनाया था कि पेड़ हमारे वृद्ध है, पौधे हमारे बच्चे हैं। यदि ये वाला फार्मूला यदि सब अपना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकृति इतनी सक्षम है अपने आप में कि वो अपना अपना संरक्षण खुद कर सकती है यदि उससे छेड़छाड़ नहीं की है। पेड़ हमारे वृद्ध है का मतलब ये है कि पेड़ हमारे बुजुर्ग है, उनकी देखभाल करो, रक्षा करो। और पौधे हमारे बच्चे हैं, जैसे अपन अपने बच्चों की क्या कहते देखभाल करते हैं, उस प्रकार से उनकी वृद्धि करो, विकास करो।
सर हम आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, आज इस अवसर पर आप उन नेताओं से सकारात्मक कदम उठाने के लिए किस कदम या नीतियों की उम्मीद करते हैं, जैसे विधायक, सांसद, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, नगर पंचायत अध्यक्ष,
जी
लोगों से किस तरह की आशा करते कि वो किस तरह के कदम उठा, किस तरह की नीतियों को लागू करे जाओ अपने क्षेत्र में?
एक तो सर क्या है, पर्यावरण शिक्षा के प्रति जो सरकार की जो नीतियां है हमेशा बदलती रहती है, वो स्थायी करे, सभी मिलके स्थायी करे। हर वर्ष जो करोड़ों वृक्षारोपण, पौधों का वृक्षारोपण है, उसमें क्या है वो लाखों में ना करके हजारों में ही करे, कोई जरूरी नहीं है। और उनको क्या करे, उनको संरक्षित रखने का सुरक्षा का पहले ध्यान रखे, उसके बाद ही वो क्या करे अपना उसका वृक्षारोपण करे। और एक लक्ष्य रखे कि उसको 100% जीवित रहे, और उसका जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट 10 साल तक लेते रहे सरकार भी, जहां जहां जो जो नगर निकाय है जो भी जिसके अंदर में वो एरिया आता है। और पेड़ काटने वालों को मैंने बताया आपको कि पेड़ जो काटते हैं उनके ऊपर धारा 302 के समान लगाए है ना, तो इससे क्या हो जाएगा। और जो जमीन जो निरुपयोगी है सर, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीन जो निरुपयोगी है, जैसे टीले है, जो पहाड़िया है, ये बहुत सी जमीन निरुपयोगी है, उसको क्या है कि सरकार ने हम जैसे व्यक्तियों को और पर्यावरण संरक्षण करने वाले जैसे संस्थाओं को लीज पे दे देना चाहिए, और वहां पे अधिकांश अधिक से अधिक फलदार छायादार इमारती लकड़ी का रोपण करने के लिए कहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सरकारी क्षेत्र में जो भी अभी जो वन क्षेत्र है वो बढ़ेगा। हमने देखा है कि 30-33% अपने पृथ्वी का भाग वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 20% ही रह गया पूरे भारत में, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये नेताओं से निवेदन है कि पर्यावरण के प्रति थोड़ा संवेदनशील बने, क्योंकि विषय ये जो विषय है पूरे भारत का या अपने सौसर का या छिंदवाड़े का नहीं है, पूरे विश्व का है ये। सर थोड़ा संवेदनशील बने, जिससे क्या होगा कि वन संरक्षण में सुधार होगा। और जैसा क्या है कि विकास कार्य में जो भी विकास कार्य जैसे फैक्ट्रियां बनती है, उसके बाद में रोड बनते हैं, तो वहां पे जितने भी पेड़ काटे जाते हैं उनको उतने ही संख्या में पेड़ दूसरे जगह लगाए, इस बात का ध्यान रखे। तो कम से कम जितने कटे उतने तो लग जाएंगे, भले ही नए ना लगाए, कम से कम जितने वो कटे उतने ही लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पेड़ जो है तो वृक्षारोपण वहीं करे, शहरों में जैसा करना है कि नालियों से दूर रहे, अपने बिजली के तारों से दूर रहे, रोड के दूर रहे, ये क्योंकि वो बाद में विकास होते रहता है तो फिर उसके बाद उन्हें काटना ना पड़े। ये मेरा नेताओं से जनप्रतिनिधियों से निवेदन है।
सर जैसा कि अभी आपने अपने उद्बोधन में कटाई की बात कही है,
जी जी,
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक वन विभाग की बात है तो उनके पास अपनी टीम है वनों की रक्षा करने के लिए, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध कटाई के मामले सामने आ रहे, लेकिन हम नदी नालों के यदि किनारे की बात करें जो राजस्व के अंतर्गत आता है, आज नदी नालों के किनारे के जो आर्जन है और अन्य प्रजाति के जो पेड़ है प्राय पूरी तरह समाप्ति की ओर है, और राजस्व विभाग का इस ओर ध्यान नहीं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
अब विभाग का सवाल है सर, यदि क्या कहते अनैतिक यदि कटाई बंद कर दी ना, तो ये सारी हो सकती है, अधिक से अधिक कानून कठोर बने, और ऐसा नहीं कि क्या कहते वो मेरे एमएलए का पहचान का या सांसद के पहचान का एक फोन चला जाता है छोड़ देते हैं। कानून सबके लिए एक समान हो सर, और जैसे मैंने धारा 302 का जो उल्लेख किया है उस प्रकार की धारा बने ना सर, एक दो को सजा हो जाए तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आगे भी वो उस प्रकार से करे। इससे क्या हो गया, नदी नालों के किनारों के पहले अपन देखते थे कितना आजन के ज्यादा पेड़ होते थे, लेकिन अब वो क्या है कि पिछले समय एक रस आम के पेड़ कट गए हैं, इसके कारण वो खोके ओके बनाने कारण आप हम सभी लोग परिचित है। तो इसके लिए कानून कठोर हो, जहां कानून जो कानून जितना कठोर रहेगा उतना ही हर काम अधिक से अधिक सुचारू रूप से होगा, उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर जलवायु की पुकार, जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखी। मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
ठीक है सर, धन्यवाद सर, नमस्कार।
नमस्कार सर।